लाख लाख शुक्र है कि वो अभी भी हमसे पुरुमीत है और हमें बात कहने और सुनने के लिए मौका देता है। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब तो ऐसे ही लगता है कि फ़बी ये हदीस इम्बादहु यूमिनून, अब इसके बाद और भला कौन सी बात है जिस पर तुम ईमान लाओगे। कुरान भी है, हदीस भी है, सीरत भी है, मोमिन के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। उसके लिए हर लम्हा खैर का और उसके लिए अल्लाह की तरफ से बेहतरियों को पाने का लम्हा होता। और एक और दिन अगर हमारी ज़िंदगी में आया तो उसमें अगर हमने अच्छे काम ना किए और वैसे ही चला गया तो हो सकता है कि वो कल क़यामत के दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ी हसरत का बायस हो। अल्हम्दुलिल्लाह रहीकुम मख्तूम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़रे आखरत भी देख चुके। अब कुछ छोटे छोटे ज़मीमे हैं जिनको आप बुकलेट्स कह सकते हैं, जो असल किताब के साथ लगा हुआ वो हिस्सा होता है जो अमूमन किसी भी किताब के बाद फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स कह लीजिए, या जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद दिल में ज़रूर ख्वाहिश आती है कि कुछ ऐसी बातें भी हम ज़रूर सुन लें, समझ लें कि जो आप के बारे में मज़ीद इजाफ़ा बने, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सीरा कह लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे फिर हम कुछ चीज़ें ऐसी ही पढ़ेंगे कि जिसको पढ़ने के बाद वाकई हम अपने नबी को और भी ज़्यादा जानने लगेंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए इसको आसान कर दे। शुरू करते नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रब्बि श्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वलाल इब्राहिम इन्नक हमीदु मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा बारक ताला इब्राहिम वला आली इब्राहिम इन्नक हमीदु मजीद। रही को मख्तूम में से हम आज जो टॉपिक लेंगे वो है ख़त्म नबूवत। इससे पीछे हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी सफ़र देखा। एकदम दिल उदास हो जाता है और दिल में ख्वाहिश आती है कि व्हाट नेक्स्ट। किसी भी चीज़ का एंड इंसान को हमेशा सोचने पे मजबूर कर देता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए एक बहुत बड़ा पैगाम देकर कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारा काम है, जिसको आप कह सकते हैं कि नबूवत ख़त्म हुई, कारे नबूवत अभी बाकी है। रिसालत पूरी हुई, कारे रिसालत अभी बाकी है। और हम इस लिहाज से खुशकिस्मत लोग हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें एक ऐसा काम मिल गया कि ज़िंदगी भर करते रहेंगे और अपनी नस्लों को भी अपनी ज़िंदगी में उसी काम पे लगा जाएंगे, तो वो काम ख़त्म नहीं होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल अहज़ाब की आयत की रोशनी में खातमुन नबीयीन थे। अल्लाह ताला ने नबूवत के की जो सीरीज़ चल रही थी उसके ऊपर एक मोहर लगा दी, और मोहर से मुराद जहाँ स्टैम्प नहीं सील है। ये नहीं कि हर बंदा स्टैम्प लेके फिरे और कहे कि मैं आपकी की उस नबूवत का एक हिस्सेदार हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए अमल की क्या बातें। पीछे भी हमने पढ़ा था कि नबी सल्लम की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ही मुसैलमा कज़्ज़ाब और इसी तरह से अस्वद अंसी जैसे लोग उठे और आपको अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखा दिया था कि आप किस बात 30 झूठे मदियाने नबूवत पैदा होंगे, और वो हो चुके। अभी तक चल रहे हैं लोग अपने ज़र्फ़ के मुताबिक ये ख्वाहिश रखते और अपने दिल की बातों को ज़ुबान पे लाते हुए सुनाई देते हैं। कोई कहता है कि मैं मसीले मसीह हूँ, तो कोई कुछ और, कोई कुछ और। लेकिन हमारा ईमान है एक मुसलमान होने के नाते कि आप आखिरी नबी थे, इसमें कोई शक नहीं, कोई हैंकी नहीं, कोई बैंकी नहीं। स्ट्रेट सीधी कॉलन सदीदन वाली बात है कि अल्लाह के नबी के बाद नबुवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब इसको किसी भी चोर दरवाज़े के रास्ते से खुला रखना, ये असल में अपने ही अंदर के कुछ छुपे हुए नज़रियात को बाहर लाना है। तो आइए देखते हैं कि इस्लाम इस मामले में हमें क्या रहनुमाई देता है, और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला फिर हम आगे आपके ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे, बेटियाँ, बेटे, बीवियाँ, ताकि कम अज़ कम अहले बैत से हमारा तारुफ भी हो। और ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स जिससे तकरीबन 2 बिलियन लोग मोहब्बत करते हैं उसके बारे में हम जाने ही ना, और बाकी लोग उनके बारे में जो मर्ज़ी कह जाए। ये भी एक लम्हे फिक्रिया है, गुलकारों, अदाकारों, क्रिकेटर्स के बारे में लोग जानते हैं लेकिन नबी सल्लम के बारे में बहुत कम जानते हैं, और जो जानते भी हैं वो कैसा जानते हैं इसको हम देखेंगे। मेरे पास किताब में जो टॉपिक है वो है खाने नबूवत, यहीं से शुरू करूंगी। हिजरत से कबल मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना आप और आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुश्तमिल था। शादी के वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 40 साल। ये छोटे छोटे जुमले अगर आप अलग लिख लेंगे ना तो आपका एक इंसाइक्लोपीडिया बनेगा, और अगर आप इसका एक असाइनमेंट बना लेंगे तो फिर उसके बाद तो ये चीज़ें भूलेंगी भी नहीं इंशाल्लाह। हज़रत खदीजा आपकी पहली बीवी थी और इनके जीते जी आपने कोई और शादी नहीं की। आपकी औलाद में हज़रत इब्राहिम के माँ सिवा तमाम साहबजादे और साहबजादियाँ इन्हीं यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से थी। साहिबजदगान में यानी बेटों में तो कोई ज़िंदा ना बचा, अलबत्ता साहबजादियाँ हयात रहीं। इनके नाम ये हैं ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रदी अल्लाहु अन्हुम अन्हुन्ना। ज़ैनब की शादी हिजरत से पहले इनके फूफीजाद भाई हज़रत अबुल आस बिन रबी से हुई। रुकैया और उम्मे कुलसूम की शादी यके बदीगरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी जंगे बदर और जंगे उहद के दरमियानी अरसे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तन्हो हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाहु अन्हो से हुई, और इनके बतन से हसन, हुसैन, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रदी अल्लाहु अन्हुम पैदा हुए। अब आप देखिए कि ये सारा पढ़ते हुए जहन में आ रहा है ना कि अल्लाह के नबी इंसान थे। जितना ज़्यादा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते जाएंगे ना उतना ही आप देखेंगे कि आपका दिल गवाही देगा इस बात की कि आप इंसान थे, इंसानों की तरह औलादों वाले थे, बीवियां थी आपकी, तो जब इंसान थे और इंसानी ज़रूरियात आपके साथ लगी थी तो फिर आपके मेरे लिए भी तो यही हुक्म है कि इसी दुनिया की सारी चीज़ों में लगकर हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के रास्ते पे रहना है। फिर इसके बाद आप देखिए कि आपकी बेटियां और बेटियों की औलादें, इनकी डिटेल्स तो हमें मिलती है लेकिन आपके बेटों का हमें ज़्यादा नहीं पता क्योंकि वो तो दुनिया से बचपन में ही चले गए। इसमें भी एक हिकमत थी, ना जाने क्या हो जाता अगर आपका कोई बेटा भी ज़िंदा रहता। अभी तो आपके नवासान जो थे हज़रत हसन, हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुम और इसी तरह आपकी बेटियां, उन्हीं के बारे में लोग क्या कुछ ना कहते रहे। यानी लोग असल में गलुफ करते हुए जो प्यारे होते हैं ना उनके प्यारों के प्यारों से भी मोहब्बत करने लग जाते हैं और कभी कभी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो बहुत ही मुमकिन है कि अगर आपका कोई बेटा जिंदा रहता जवान होने तक तो उम्मत में बहुत सारे बिगाड़ उस नाम से भी शुरू होते, और अल्लाह अपनी हिकमतों को खूब जानता है। ये बात भी मालूम रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के बिलमुकाबिल ये इम्तियाजी खसूसियत हासिल थी कि आप मुख्तलिफ अगराज के पेश नज़र 4 से ज़्यादा शादियां कर सकते थे। चुनाचे जिन औरतों से आपने अक़द फरमाया यानी निकाह फरमाया इनकी तादाद 11 थी, जिनमें से 9 औरतें आपकी रहलत के वक्त हयात थी और 2 औरतें आपकी ज़िंदगी ही में वफात पा चुकी थी, यानी हज़रत खदीजा और उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदी अल्लाह अन्हुमा। इनके अलावा मज़ीद 2 औरतें हैं जिनके बारे में इख्तलाफ़ है कि आपका इनसे अक़द हुआ था या नहीं। لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے پاس رخصت نہیں کیا گیا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام اور ان کے مختلف حالات ترتیب وار پڑھتے ہیں. الحمدللہ اس موضوع پہ لوگ ہمیشہ ہی سننا بھی چاہتے ہیں اور ہمیشہ کہا بھی گیا. ہم نے محسن انسانیت بک پڑھی تو اس کے اینڈ پہ بھی یہی ساری چیزیں تھیں. اب یہاں دوبارہ پڑھ رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کا حق ہے, لیکن یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے جس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اگر آج کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے باہر, کوئی کچی بات, کوئی بیہودہ بات, کوئی اپنے ہی ظرف کا کہہ لیجئے کہ اظہار کرتا ہے کوئی, تو کم از کم آپ کو اتنا تو معلوم ہو کہ آپ اپنے بچوں کو سیٹسفائیڈ کر سکیں. کیونکہ باہر کی دنیا میں جب آندھیاں چلتی ہیں تو اس وقت پھر انسان گھر میں ہی بنا لیتا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے نبی سے متعارف نہ کرایا, اور جیسا کہ آپ کی شادیوں کو عموماً بنیاد بنایا جاتا ہے, تو اس پہ کوئی بات کہی اور ہم اس کے بارے میں نہ جان سکے یا نہ بتا سکے, تو بہت ہی بڑے مسئلے کی طرف بات جائے گی. تو آپ کے ازواج مطہرات میں سے آپ دیکھیے کہ ایک تو حضرت خدیجہ تھی جو آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں, دوسری حضرت سودا بنت زمع تھی. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے نہیں وہ سوری میں نے غلط جملہ بول دیا, یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب دو آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں, اور جو حضرت زینب تھی ان کو ام المساکین کہتے تھے. تو گویا کہ پہلی بیوی آپ کی حضرت خدیجہ تھی, پھر اس کے بعد حضرت سودا بنت زمع, یہ دوسری بیوی تھی آپ کی. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن بعد نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں شادی کی. آپ سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہ اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمر کے عقد میں تھی, اور وہ انتقال کر کے انہیں بیوہ چھوڑ گئے تھے. اور یاد رکھیے کہ جس طرح حضرت خدیجہ بڑی عمر کی خاتون تھی, شادی شدہ تھی, بچوں والی تھی, تو حضرت سودا بھی بڑی عمر کی تھی اور سیاہ فام تھی, یعنی دوسری شادی جو عموماً جوانی میں ہونے والی شادیوں میں سے ایک بڑی اہم شادی ہو سکتی تھی. آپ نے اپنی زندگی کے 15 اور اوپر آگے باقی سال لگا لیجئے نبوت کے بعد کے 10 سال, تقریباً 25 سال آپ نے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے بلا شرکت غیر, کوئی دوسری عورت آپ کی زندگی میں خدیجہ کی زندگی میں نہیں آئی. 40 سال کی عمر کی ایک خاتون 25 سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنتی ہیں, اور آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو نبوت ملی, 15 سال ہو گئے, اور اس کے بعد 10 نبوی, پورے 25 سال آپ صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتے ہیں. عام فہم ایسے ہی ہوتا ہے, یہ جو لوگ اللہ کے نبی کی شادیوں کو بنیاد بناتے ہیں اور مونچھوں پہ تو دیتے ہیں اور زیرے لب مسکراتے ہیں نا, اصل میں ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک مرد کی سب سے جذباتی عمر وہ یہی 25 سے 50 کے بیچ کی ہوگی. وہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزاری, 4 بچوں کی ماں, 2 دفعہ شادی شدہ, وہاں تو ایسے کوئی جذبات نہ تھے جس کو لوگ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. اور چلیے وہ تو ہوا, اب دوسری عورت جو کی وہ بھی سودا, یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے بعد میں اس خدشے کے تحت کہ اللہ کے نبی ان کو چھوڑ نہ دیں اور اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی. تو یہ شادیاں بامقصد تھیں, اس کی ڈیٹیل یہاں زیادہ نہیں, لیکن اگر آپ محسن انسانیت سیریز کے آخری ٹاپکس لیں تو اس میں بہت تفصیل سے یہ سب کچھ ہے کہ آخر ہر شادی کے پیچھے حکمت کیا تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بیوی تھی بنت ابی بکر رضی اللہ صدیق رضی اللہ عنہما. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی, یعنی حضرت سودا سے شادی کے 1 سال بعد اور ہجرت سے 2 برس 5 ماہ پہلے. اس وقت ان کی عمر مبارک 6 برس تھی, پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا. اس وقت ان کی عمر مبارک 9 برس تھی اور وہ باقیرہ تھیں. ان کے علاوہ کسی اور باقیرہ عورت سے آپ نے شادی نہیں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی اور امت کی عورتوں میں علل اطلاق, یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھی. अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लें, लोग इस पे बड़ी बात करते हैं, तो मेरा सवाल है एक आपसे कि आपने आयशा का बुरा नाम नहीं पढ़ा रदी अल्लाह अन्हा, सिद्दीका बिनते अबी बकर, क्या अबू बकर को नहीं पता था, बाप को नहीं पता कि बेटी किसको दे रहा हूँ, या बाप को कोई मजबूर किया गया नौज़ुबिल्लाह। दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से हज़रत आयशा से निकाह का पैगाम दिलवाया था, असल में तो पूरी उम्मत के लिए सहूलत की जा रही थी कि बूढ़ी औरत से भी जायज़, बच्चों वाली से भी जायज़, बेवा से भी जायज़, मुतल्लिका से भी जायज़, दो तीन दफ़ा शादी होने के बाद आई हुई औरत से भी जायज़। तुम क्या बात करते हो? आयशा की बात करते हुए लोग क्यों भूल जाते हैं पे बीबी खदीजा को और बीबी सौदा को? अबू बकर ने किया, एक नबी की बीवी और वो बाप जो कि साए की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था हर जगह, तो अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ थे और इस्लाम के साथ थे, तो अगर वो अपनी बेटी की शादी अपनी खुशी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, तो क्या आज के एतराज़ात खड़ने वाले अल्लाह के नबी के ऊपर ऐसी बातें करने वाले आयशा का ज़्यादा दर्द रखते हैं? नऊज़ु बिल्ला, सुम्मा नऊज़ु बिल्ला। कोई आयशा की मर्ज़ी से तो नहीं शादी हुई थी, अल्लाह के हुक्म से हुई थी, अल्लाह की मर्ज़ी से ये सब कुछ हुआ था और दिस एंड दैट, तो ये सारा कुछ इससे ज़्यादा नहीं बात करने की ज़रूरत होती। याद रखिए, जो कहता है कहने दीजिए, जो करता है उसको करने दीजिए, जिसके जो नसीब में है उसको लेने दीजिए, आप अपने ईमान की फ़िक्र कीजिए, आपने आप को बचा के रखिए। कभी ऐसे मौजूदात पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पे और ना एक मर्द की एक से ज़ायद शादी पे और ना 70 हूरों पे। बस अल्लाह ताला के फ़ैसले, उस पे खुश रहिए, उसके ऊपर राज़ी रहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमारा ईमान सलामत रहे। अभी तो झिझक है ना, अभी तो झिझक है, आने वाली नस्लें जिस तरह से बोल्ड और ब्लंट होती जा रही हैं, शायद वो दूसरों की बोली सुनते सुनते अपने प्यारे नबी के बारे में कुछ बोलने ही ना लग जाए। इसलिए इस मौजू को कम से कम डिस्कस किया करें, बिल्कुल ऐसी बातों को मौका ही ना दें कि कोई आपके सामने ज़ुबान खोले, और याद रखिए इस पे बात ही ना किया करें। ईमान की सेफ्टी, ईमान का तहफ्फुज़ इसी बात में है कि आप इसके बारे में बात ही ना करें, क्योंकि नहीं पता, अल्लाह कुरान में कहते हैं ना सूरह हुजरात में कि तुम्हें पता ही ना चले और तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं। तो बिल्कुल अपने आप को इस पे मुतमईन रखा करें कि जो भी था अल्लाह को पता है और उसके नबी के साथ जो मामला हुआ वो अल्लाह के हुक्म से था। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए कि इतनी छोटी उम्र की औरत, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, जब एक बड़ी उम्र की औरत से शादी हो सकती है तो एक छोटी से भी हो सकती है। आप देखिए बाद के हालात, आज़ादी की तहरीकें और जंगो जिदाल जो गुज़रा, वाकई बच्चियों की इज्जतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बड़े मर्दों से उनकी शादियां करनी पड़ी, वरना तो या तो शैतान के दरवाज़े खुल जाते या उन बच्चियों को निकाह में दे दिया जाए। तो बजाय इसके कि उन बच्चियों को बेसहारा समझकर हर बंदे की नज़र उन पे हो, ज़ाहिर है वो किसी की भी महरम नहीं हुई ना, माँ बाप मर गए, आज भी आपको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, जगह जगह तो जंग लगी हुई है ना। अब वो बच्चियाँ जिनके माँ बाप मारे जाते हैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट में, कोई किसी और चीज़ में, कोई किसी और मामले में, तो उसके बाद क्या होता है? अब जो बच्चे पीछे खाली रह जाते हैं, हो सकता है किसी की बेटी ही हो, अब वो किसको महरम बनाएं, क्या करें उस बच्ची के साथ? क्या वो बच्ची हमेशा गैर महरूमों में जिए और जवान होने पे फिर कोई उसका निकाह करवाए? आम और मेरे आपके घरों में तो ये बात बड़े प्यार और मोहब्बत से कही जा सकती है ना, बेटी की शादी की और फलां बच्ची का निकाह पढ़ा। ऐसे जंगो जदल के माहौल में ऐसी बच्चियाँ जिनके माँ बाप नहीं जिंदा रहते, आप सोच के बताइए कि उनके साथ क्या होना चाहिए? किसी की बहन बन जाए तो क्या वो बुरी बात नहीं है? मुँह बोली बहन का तो तसव्वुर नहीं, शैतान तो शैतान ही है। तो लिहाजा ये एक किस्म का प्रॉब्लम सॉल्यूशन था, आपकी ज़ात ट्रबल शूटिंग की ज़ात थी, अल्लाह ने आपके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कराया, तो उम्मीद है कि शरह सदर हुआ होगा। चौथी बीवी, और ये जो बताया जा रहा है ना ये तरतीब के साथ है, چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھی. ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے جو بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں رحلت کر گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور شادی کا یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی 50 سالہ زندگی میں بس ایک ہی خاتون, پھر ایک سال تک پھر بھی ایک ہی خاتون یعنی سودا, اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ مل گئیں. چلیے یہاں بھی دیکھیے کہ ایک کنواری چھوٹی عمر کی عورت سے شادی ہو گئی, تو اب تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا سلسلہ, کہ جس کو ایسی بیوی مل گئی جو کہ لوگوں کے خیال میں من پسند عمر ہوتی ہے اور اسی ایج کی تھی تو ختم ہو جاتا سلسلہ. نہیں, پھر یہ اگلی شادیاں کی ہو رہی ہیں. بیوہ عورت ایک ینگ لڑکی سے شادی ہونے کے بعد کوئی مرد کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرنا کوئی گلیمرس کام سمجھے گا یا ایک مجبوری اس کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہے؟ یعنی جس اینگل سے بھی دیکھ لیجیے الحمدللہ آپ کا سر اونچا ہی رہے گا کہ ہمارے نبی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس پہ آج ہم مسلمان شرمسار ہوں. علم کی کمی ہمیشہ شک اور شبہ کو ڈالتی ہے بیچ میں. جہاں بھی آپ کسی چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے آپ فوراً دوسرے فریق پہ شک کرنے لگتے ہیں, اور یہاں تو ویسے ہی علمی کمی دین کے علم کی کمی ہے تو اس سے تو اور ہی فتنے ہوں گے نا. تو بہرحال پھر 5ویں شادی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما سے تھی. یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن سعصع سے تعلق رکھتی تھی. مسکینوں پر رحم اور مروت اور رقت اور رافت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن جہش کی عقد میں تھی. وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی, مگر صرف 8 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئیں. یہ تھی وہ دوسری بیوی جو آپ کی زندگی میں دنیا سے چلی گئیں. اور آپ دیکھیے کہ جنگ احد بالکل شروع کی جنگ ہے, اس کے بعد یہ آپ کو ملی ہوں, اور ظاہر ہے کہ ایک شہید کی بیوہ تھی, اللہ کے نبی نے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا اور ہر شادی آپ کی جو تھی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی. تو بہرحال تھوڑا ہی عرصہ رہی اور اس کے بعد وفات پا گئے. پھر اسی طرح ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہما اگلی بیوی تھی. یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی. جمادی الاخرہ سن 4 ہجری میں ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شوال سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. 4 بچے تھے ان کے بھی جب شادی ہو کے آئی ہیں, ورنہ آپ کہتے کہ میں ان بوڑھی عورتوں سے شادی کر کے کیوں عائشہ کے ساتھ اپنی باری لمبی کرتا رہوں, اور وہاں تو ایک دن رہنا ہوتا ہے ہر ایک, جتنی بیویاں ہوں گی تو ظاہر حضرت عائشہ کے ساتھ رہنے کا دن زیادہ دور ہوتا جائے گا نا. لیکن جو اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں نا وہ اپنے ذاتی نفع نقصان کو نہیں تولتے. ہمیں اصل میں ہر چیز میں چونکہ اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں نا, اس لیے پھر ہم ایسی باتیں کرتے اور سنتے ہیں. پھر اس کے بعد زینب بنت جہش بن ریاب رضی اللہ عنہا تھی. یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھی. ان کی شادی پہلے زید بن حارثہ سے ہوئی تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا, لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی. خاتمہ عدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی, فلما قدا زید منہا وترا فلما قدا زید منہا وترن زوجناکہا. دیکھیے لفظ زوجناکہا کا ترجمہ دیکھیے گا, یہ 36 آیت ہے سورت الاحزاب کی. جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا, یعنی اس بیوی سے نکاح آپ کا آسمانوں پہ ہوا تھا, اللہ نے کیا. دنیا میں بھی جو نکاح ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ تو آسمانوں پہ ہو گیا, حجتیں تمام ہو رہی ہیں اور یہ عورت پھر آپ کے نکاح میں آ گئی. انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں, جس میں متبنہ یعنی لے پالک, جس کو اڈاپٹڈ سن کہہ سکتے ہیں, اس کے قدیے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا. حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ذی قعدہ 5 ہجری میں یا اس سے کچھ अरसा पहले हुई। आप नोट कर रहे हैं, हिजरत से लेकर ये 5 साल 6 साल के अंदर ही सारी शादियां हो रही हैं, ज़रूरत के तहत थी। फिर 8वीं बीवी थी जुवैरिया बिनत हारिस रदी अल्लाह अन्हा। इनके वालिद कबीला खुजाया की शाख बनु मुस्तलिक के सरदार थे। हज़रत जुवैरिया बनु मुस्तलिक के कैदियों में लाई गई थी और हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास रदी अल्लाह अन्हों के हिस्से में पड़ी थी। उन्होंने हज़रत जुवैरिया से मुकातबत कर ली, यानी एक मुकर्रा रकम के इवज़ आज़ाद करने का मामला तय कर लिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ से मुकर्रा रकम अदा फरमा दी और इनसे शादी कर ली। ये शाबान 5 या 6 हिजरी का वाक़या है। इसमें भी आप देखिए कि किसी की आज़ाद करदा लौंडी से निकाह करने की कह लीजिए कि सुन्नत दिखती है इसमें। तो सच्ची बात है कि ये सारी ख़वातीन जो आपकी ज़ौजियत में आई, ये किसी न किसी दर से ठोकर खाई हुई थी। ये रिहेबिटेशन था, ये बेवाओं से और मुतल्लिकात से और सोसाइटी से कटी हुई औरतों से शादी करने की सारी हुज्जतें अल्लाह के नबी के ज़रिए से कायम की जा रही थी। इसके बाद फिर अगला नंबर आता है उम्मे हबीबा रमला बिनते अबी सुफियान रदी अल्लाह अन्हुमा का। ये उबैदुल्ला बिन जाहश के अक़द में थी और इसके साथ हिजरत करके हबशा भी गई थी, लेकिन उबैदुल्ला ने वहाँ जाने के बाद मुर्तद होकर ईसाई मजहब कबूल कर लिया और फिर वहीं इंतकाल कर गया। लेकिन उम्मे हबीबा अपने दीन और अपनी हिजरत पर कायम रहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम 7 हिजरी में अमर बिन उमैया दमरी को अपना ख़त देकर निजाशी के पास भेजा, तो निजाशी को ये पैगाम भी दिया कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपका निकाह कर दे। इसने उम्मे हबीबा की मंजूरी के बाद इनसे आपका निकाह कर दिया और शुरहबील बिन हसना के साथ इन्हें आपकी खिदमत में भेज दिया। तो गोया कि ये दूसरे मुल्क में रहकर दूर से निकाह पढ़ाए जाने की दलील बनी, क्योंकि इनका निकाह हबशा में हुआ था, यानी जैसे आज कभी ज़रूरत के तहत टेलीफोन पर निकाह किया जाता है, इस तरह की बात है। और इसी तरह से आप देखिए कि अबू सुफियान की बेटी हैं। अभी अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए, लेकिन बेटी जब मुसलमान हो गई तो उस न्यू मुस्लिम बच्ची को एक किस्म की सपोर्ट दी गई इस निकाह की सूरत में। फिर इसके बाद अगला नंबर है हज़रत सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब का। ये बनी इसराइल से थी और हैबर में क़ैद की गई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए मुंतखब फरमा लिया और आज़ाद करके शादी कर ली। ये फ़तेह खैबर सन 8 7 हिजरी के बाद का वाक़या है, यानी ये यहूदियुल नस्ल थी। दूसरा कह लीजिए कि इसमें यह भी पता चला कोई किसी भी दीन को छोड़कर इस्लाम पे आए तो वो वेलकम है, ये मुराद है। इसके बाद अगला नंबर है हज़रत मैमूना बिनते हारिस रदी अल्लाह अन्हा का। ये उम्मुल फजल लुबाबा बिनते हारिस रदी अल्लाह अन्हा की बहन थी। इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ीकादा सन 7 हिजरी में उम्रे कज़ा से फारिग होने और सही कौल के मुताबिक एहराम से हलाल होने के बाद शादी की। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि अल्लाह के नबी जब उम्रे कज़ा के मौके पे गए, यानी जब पहले गए थे तो नहीं हो सका उम्रा, फिर अगले साल हुआ, यानी हुदैबिया से अगले साल कह लीजिए, तो फिर उस वक्त आपकी इनसे शादी हुई थी। ये 11 बीवियाँ हुईं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्दे निकाह में आईं और आपकी सोहबत और रिफाक़त में रहीं। इनमें से 2 बीवियाँ यानी खदीजा और ज़ैनब रदी अल्लाहु अन्हुन्ना उमुल मसाकीन की वफ़ात, यानी हज़रत खदीजा और ज़ैनब जिनका लक़ब उमुल मसाकीन था, इनकी वफ़ात आपकी ज़िंदगी में ही हुई और 9 बीवियाँ आपकी वफ़ात के बाद हयात रहीं। इनके अलावा 2 और ख़वातीन जो आपके पास रुख्सत नहीं की गई, इनमें से एक कबीला बनू किलाब से ताल्लुक़ रखती थी और एक कबीला कंदा से, यही एक कबीला किंदा से। यही कबीला किंदा वाली खातून जूनिया की निस्बत से मारूफ हैं। इनका आपसे अक़द हुआ था या नहीं और इनका नाम और नसब क्या था, इस बारे में अहले सीर के दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं जिनकी तफसील की ज़रूरत नहीं है। चलिए, यानी ये टॉपिक इतना पूरा हुआ। रह गया मसला लौंडियों का। जहाँ तक लौंडियों का मामला है तो मशहूर यह है कि आपने 2 लौंडियों को अपने पास रखा, एक मारिया किप्तिया को जिन्हें मकूकस फरमा रवाए मिस्र ने बतौर हदिया भेजा था। इनके बतन से आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए। जो 55 ही में 28 या 29 यानी 28 और 29 शवाल 10 हिजरी मुताबिक 27 जनवरी 632 ईस्वी को मदीना के अंदर इंतकाल हो गए। दूसरी लौंडी रेहाना बिनते जैद थी, जो यहूद के कबीले बनी नज़ीर या बनी कुरैज़ा से ताल्लुक़ रखती थी। ये बनु कुरैज़ा के कैदियों में थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए मुंतखब फरमाया था और वो आपकी लौंडी थी। इनके बारे में बास आप कह लीजिए कि इनके बारे में बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहसियत लौंडी नहीं रखा था बल्कि आज़ाद करके शादी कर ली थी, लेकिन इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह की निगाह में पहला कौल ही राजे है। अबू उबैदा ने इन दो लौंडियों के अलावा दो मज़ीद लौंडियों का भी जिक्र किया है, जिसमें से एक का नाम जमीला बताया जाता है, जो किसी जंग में गिरफ्तार होकर आई थी और दूसरी कोई और लौंडी थी जिन्हें हज़रत ज़ैनब बिनते जहश ने आपको हिबा किया था। अब देखिए कि उस दौर का ट्रेडिशन था, सौ सौ लोग, सौ सौ शादियाँ भी होती थी। जी, अरबों के ऐसे सरदार थे कि जिनके ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने यानी इस हद तक भी आगे जाने की मिसाल बनाकर पेश कर दिया। अब यहाँ ठहर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के एक पहलू पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। आपने अपनी जवानी के नहायत पुरकुव्वत और उम्दा अय्याम यानी तकरीबन 30 बरस सिर्फ़ एक बीवी पर इक्तफा करते हुए गुजार दिए, और वो भी ऐसी बीवी पर जो तकरीबन बुढ़िया थी, यानी पहले हज़रत खदीजा पर और फिर सौदा पर। तो क्या ये तसव्वुर किसी भी दर्जे में माकूल हो सकता है कि इस तरह इतना अरसा गुजार देने के बाद जब आप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए तो आपके अंदर यकायक जिनसी कुव्वत इस कदर बढ़ गई कि आपको पे दर पे 9 शादियां करनी पड़ी? जी नहीं, आपकी ज़िंदगी के इन दोनों हिस्सों पर नज़र डालने के बाद कोई भी होशमंद आदमी इस तसव्वुर को माकूल, माकूल कहते हैं मफूल से अक़ल में आने वाला, यानी बात अक़ल में आती ही नहीं है, तस्लीम नहीं कर सकता। हकीकत यह कि आपने इतनी बहुत सारी शादियाँ कुछ दूसरे ही अगराज और मकासद के तहत की थी, जो आम शादियों के मुकर्रा मकसद से बहुत ही ज़्यादा अजीमुल क़दर और जलीलुल मर्तबा थे। अब थोड़ी सी वजाहत है कि आखिर आपकी शादियाँ इतनी क्यों हुई। इसकी वजाहत यह है, तौज़ीह मुराद वजाहत, कि आपने हज़रत आयशा और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से शादी करके हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, दोनों दोस्त थे ना, साथी भी थे और बाद में दोनों खलीफे अव्वल और दोम बने, इन दोनों के साथ रिश्ते मुसाहरत कायम किया। मुसाहरत क्या है? कुरान में भी है, सूरह शोरा में, सहर से ससुराली रिश्ता कायम किया। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से पैर दर पे अपनी दो साहबजादियों यानी रुकैया फिर उम्मे कुलजूम की शादी करके और अली से अपनी लखते जिगर फातिमा की शादी करके जो रिश्ता हाय मुसाहरत कायम किए, इनका मकसूद ये था कि आप इन चारों बुज़ुर्गों से अपने ताल्लुकात नहायत पुख्ता कर लें, क्योंकि ये चारों बुज़ुर्ग पेचीदा तरीन मराहल में इस्लाम के लिए फ़िदाकारी और जानसपारी का जो इम्तियाजी वसफ़ रखते थे वो मारूफ है। क्या पता चला? जो जितना आपके करीब होगा ना, उसकी रिश्तेदारियाँ भी आपसे ज़्यादा अच्छी निभेंगी। इसमें अमल की भी बात है, अगर आप दीन के साथ काम करते हैं और कुछ लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आपके बच्चों की शादियाँ कम से कम एक दूसरे के साथ ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों शोहरों को एक दूसरे के दोस्त बनना चाहिए, आपके बच्चों को एक दूसरे के बच्चे के दोस्त बनना चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि फिर आप लोगों का काम करना, मिलना, बात करना आसान होगा, और वही फिर बात है फैमिली बॉन्डिंग के साथ फैमिली की भी चीज़ें आती है। और इसके अलावा अरब का ये दस्तूर था कि वो रिश्ते मुसाहरत का बड़ा एहतराम करते थे, यानी ससुराली रिश्तों का एहतराम बड़ा था। आज भी बहुत है, ये अलग बात है, पीछे से उनको बातें भी बहुत करते हैं लेकिन मुंह पे इज्जत बहुत करते हैं लोग। खैर, इनके नज़दीक दामादी का रिश्ता मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान क़ुर्बत का एक अहम बाब था, और दामाद से जंग लड़ना और महाजराई करना बड़े शर्म और आर की बात थी। इस दस्तूर को सामने रखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद शादियां इस मकसद से कीं कि मुख्तलिफ अफराद और कबाइल की इस्लाम दुश्मनी का जोर तोड़ दें और इनके बुग़्ज़ और नफ़रत की चिंगारी बुझा दें। चुनाचे में सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कबीला बनी मखज़ूम से ताल्लुक़ रखती थी, जो अबू जहल और खालिद बिन वलीद का कबीला था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली तो खालिद बिन वलीद में वो सख्ती ना रही जिसका मुजाहरा वो उहद में कर चुके थे, बल्कि थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने अपनी मर्ज़ी, खुशी और ख्वाहिश से इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह जब आपने अबू सुफियान की साहबजादी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली तो फिर अबू सुफियान आपके मद्दे मुकाबिल ना आए, और जब हज़रत जुवेरिया और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना आपकी ज़ौजियत में आ गईं तो कबीला बनी मुस्तलक और कबीला बनी नज़ीर से महासराई छोड़ दी। हजूर की अक़त में इन दोनों बीवियों के आने के बाद तारीख़ में इनके कबीलों की किसी शोरश और जंगी तगोदो का सुराग नहीं मिलता, बल्कि हज़रत जुवेरिया तो अपनी कौम के लिए सारी औरतों से ज़्यादा बाबरकत साबित हुई, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली तो सहाबा किराम ने इनके 100 घरानों को जो क़ैद में थे आज़ाद कर दिया और कहा कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली हैं। इनके दिलों पर इस एहसान का जो ज़बरदस्त असर हुआ होगा वो ज़ाहिर है। इन सबसे बड़ी और अजीम बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर महज़्ज़ब कौम को तरबियत देने, इसका तज़किया नफ्स करने और तहजीब व तमद्दन सिखाने पर मामूर थे, जो तहजीब व सकाफत से तमद्दन के लवाजमात की पाबंदी से और माशरे की तश्कील व तामीर में हिस्सा लेने की जिम्मेदारियों से बिल्कुल नाआशना थी। और इस्लामी माशरे की तश्कील जिन असूलों की बुनियाद पर करनी थी इनमें मर्दों और औरतों के इख्तलात की गुंजाइश न थी, लिहाजा अदम इख्तलात, इख्तलात समझते मिक्सिंग, लिहाजा अदम इख्तलात के इस असूल को पाबंदी असूल की पाबंदी करते हुए औरतों की बराह रास्त तरबियत नहीं की जा सकती थी, हालांकि इनकी तालीम और तरबियत की ज़रूरत मर्दों से कुछ कम अहम और ज़रूरी न थी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी थी। इसलिए नबी सल्लम के पास सिर्फ यही एक सबील रह गई थी कि आप मुख्तलिफ उम्र और लियाकत की इतनी औरतों को मुंतखब फरमा लें जो इस मकसद के लिए काफ़ी हों, फिर आप इन्हें तालीम और तरबियत दे दें, इनका तज़किया नफ्स फरमा दें, इन्हें अहकाम शरीयत सिखला दें और इस्लामी तहजीब व सकाफत से इस तरह आरास्ता कर दें कि वो देहाती और शहरी, बूढ़ी और जवान हर तरह की औरतों की तरबियत कर सकें और इन्हें मसाइले शरीयत सिखा सकें और इस तरह औरतों में तबलीग की मुहिम के लिए काफ़ी हो सकें। चुनाचे हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी, यानी नबी सल्लम के खानगी हालात, खानगी मुराद खाना, घर, घरेलू हालात या ख़ानदानी कह लीजिए, के खानगी हालात को उम्मत तक पहुँचाने का सहरा ज़्यादातर इन उम्महातुल मोमिनीन ही के सारा, इनमें से भी बिलखसूस वो उम्महातुल मोमिनीन जिन्होंने तवील उम्र पाई, मिसाल के तौर पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, कि उन्होंने नबी सल्लम के अफ़ाल व अक़वाल खूब खूब रिवायत किए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह एक ऐसी रस्मी जाहली रस्म, अल्लाह के नबी का एक निकाह एक ऐसी जाहली रस्म तोड़ने के लिए भी अमल में आया था जो अरब माशरे में पुश्त से चली आ रही थी, यानी नस्लों से चली आ रही थी और बड़ी पुख्ता हो चुकी थी। यह रस्म थी एक मुतबन्ना यानी लेपालक बनाने की, मुतबन्ना यानी कह लीजिए कि अडॉप्टेड को जाहली तौर में वही हकूक और हरकतें जाहली दौर में वही हकूक और हुरमतें हासिल थीं जो हकीकी बेटे को हुआ करती हैं। फिर यह दस्तूर और असूल अरब माशरे में इस कदर जड़ पकड़ चुका था कि इसका मिटाना आसान ना था, लेकिन यह असूल इन बुनियादों और असूलों से नहायत सख्ती के साथ टकराता था जिन्हें इस्लाम ने निकाह, तलाक, मीरास और दूसरे मामलात में मुकर्रर फरमाया था। इसके अलावा जाहलीत का यह असूल अपने दामन में बहुत से ऐसे मुफासिद और फ़ाहिश भी लिए हुए था जिनसे माशरे को पाक करना इस्लाम के अव्वलीन मकासिद में से था, लिहाजा इस जाहली असूल को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत ज़ैनब बिनते जहश से फरमा दी। हज़रत ज़ैनब पहले हज़रत ज़ैद के अक़द में थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, मगर दोनों में निभा मुश्किल हो गया और हज़रत ज़ैद ने तलाक देने का इरादा कर लिया। ये वो वक्त था जब तमाम कुफ्फार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ महाज आ रहा थे और जंगे खंदक के लिए जमा होने की तैयारी कर रहे थे। इधर अल्लाह ताला की तरफ से मुतबन्ना बनाने की रस्म के ख़ात्मे के इशारे मिल चुके थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजा तौर पर यह अंदेशा पैदा हुआ कि अगर इन्हीं हालात में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो ने तलाक़ दे दी और फिर आपको हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी करनी पड़ी तो मुनाफिकीन मुशरिकीन और यहूद बात का बतंगड़ बनाकर आपके ख़िलाफ़ सख्त प्रोपेगंडा करेंगे और सादा लोग मुसलमानों को तरह तरह के वसवसों में मुब्तला करके इन पर बुरे असरात डालेंगे। इसलिए आपकी कोशिश थी कि हज़रत ज़ैद तलाक ना दें ताकि इसकी सिरे से नौबत ही ना आए, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई और इसने आपको मोहब्बत आमेज़ तंबीह की। चुनाचे इरशाद हुआ, वइस्तक़ूलिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि वअनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह वतुख्फी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुबदीही वतख्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाहु। 37 आयत है सूरत अलहज़ाब की। क्या फरमाया, और जब आप इस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया है और आपने इनाम किया है यानी हज़रत ज़ैद से कि तुम अपने ऊपर अपनी बीवी को रोक रखो और अल्लाह से डरो, और आप अपने नफ्स में वो बात छुपाए हुए थे जो अल्लाह जाहिर करने वाला था और आप लोगों से डर रहे थे हालांकि अल्लाह ताला ज़्यादा मुस्तहक था कि आप इससे डरते। बिलाखिर हज़रत ज़ैद ने हज़रत ज़ैनब को तलाक दे ही दी। फिर इनकी इद्दत गुजर गई तो इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का फ़ैसला नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आप पर यह निकाह हर लाजिम कर दिया था और कोई इख्तियार और गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। इस सिलसिले में नाजिल होने वाली आयत करीमा 37 सूरत अलहज़ाब, फलम्मा कदा ज़ैद मिन हवतरो ज़वजना कहा लिकै ला यकून अलल मोमिनीन हरज हरजुन फी अज़वाज अदियाइहिम इज़ा कदौ मिनहुन्ना वतरो। जब ज़ैद ने इससे अपनी ज़रूरत पूरी कर ली तो हमने इसकी शादी आपसे कर दी ताकि मोमिनीन पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों पर कोई हरज न रह जाए जबकि वो मुंह बोले बेटे इनसे अपनी हाजत पूरी कर ले। कितना खोल खोल के कुरान बता रहा है, और अल्लाह के नबी के लिए ये कितनी बड़ी आजमाइश थी, आज तो लोग इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो बहरहाल इसका मकसद ये था कि मुंह बोले बेटों से मुतल्लिक जाहली असूल अमलन भी तोड़ दिया जाए, जिस तरह इससे पहले इस इरशाद के ज़रिए कौलन तोड़ा जा चुका था कि उदउहुम लियाबाइहिम हुवा अक्सतु इंदल्लाह, इन्हें इनके बाप की निस्बत से पुकारो यही अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है। सूरत अलहज़ाब ही की आयत नंबर 5 है ये, और आयत नंबर 40 अलहज़ाब में क्या है, माँ काना मोहम्मद नबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीजीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं बल्कि अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीजीन हैं। इस मौके पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जब मुआशरे में कोई रिवाज अच्छी तरह जड़ पकड़ लेता है तो महज बात के ज़रिए से मिटाना या इसमें तब्दीली लाना बेशतर औकात मुमकिन नहीं रहता, बल्कि जो शख्स इसके खात्मे या तब्दीली का दाई हो इसका अमली नमूना मौजूद यानी नमूना मौजूद रहना भी ज़रूरी हो जाता है। सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमानों की तरफ से जिस हरकत का ज़हूर हुआ इससे ये इस हकीकत की बखूबी वजाहत हो जाती है। इस मौके पर कहाँ तो मुसलमानों की फिदाकारी का ये आलम था कि जब उरवा बिन मसूद सक़फ़ी ने इन्हें देखा तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक और खंखार भी इनमें से किसी न किसी सहाबी के हाथ ही पर पड़ रहा है, और जब आप वुज़ू फरमाते तो सहाबा किराम आपके वुज़ू से गिरने वाला पानी लेने के लिए इस तरह टूटे पड़ रहे हैं कि मालूम होता है कि आपस में उलझ पड़ेंगे। जी हाँ, ये वही सहाबा कराम थे जो दरख्त के नीचे मौत या अदम फरार पर बैत करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जा रहे थे, और ये वही सहाबा कराम थे जिनमें अबू बकर और उमर जैसे जान निसारान रसूल भी थे, लेकिन इन्हीं सहाबा को जो आप पर मर मिटना अपनी इंतहाई सआदत और कामयाबी समझते थे, जब आपने सुलह का माहदा तय कर लेने के बाद हुक्म दिया कि उठकर अपनी हदी यानी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर दें तो आपके हुक्म की बजावरी के लिए कोई टस से मस ना हुआ। यानी देखिए, लीडर का फैसला ज़रा भी समझ नहीं आ रहा कि दिल ही नहीं चाह रहा कि उसको माने, यहाँ तक कि आप कुलक और इस्तराब से दो चार हो गए। यानी लीडर के लिए एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है, जैसे माँ बाप के लिए ये बात नाकाबले बर्दाश्त होती है कि उनके बच्चे उनकी बात ना माने, तो लीडर्स के लिए ये बात एक झटके से कम नहीं थी। लेकिन जब उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा ने आपको मशवरा दिया कि आप उठकर चुपचाप अपना जानवर ज़िबा कर दें और आपने ऐसा ही किया तो हर शख्स आपके तर्ज़ अमल की पैरवी के लिए दौड़ पड़ा और तमाम सहाबा ने लपक लपक कर अपने जानवर ज़िबा कर दिए। इस वाक़े से समझा जा सकता है कि किसी पुख्ता रिवाज को मिटाने के लिए जी कौलो अमल के असरात में कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए मुतबन्ना का जाहली असूल अमली तौर पर तोड़ने के लिए आपका निकाह आपके मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद की मुतल्लिका से कराया गया। अब देखिए, अगर अल्लाह के नबी के ज़रिए ये रस्म ना टूटती ना, तो ये क़यामत तक नहीं थी टूटनी। आज आप देखिए, लोग ज़ात बिरादरी और ख़ानदान के नाम पर क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अगर ऐसे वक्तों में एक लीडर को आजमाइश में डालकर एक रस्म तुड़वा दी जाए तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक रहमत बन जाती है। तो लीडर्स बाज़ दफ़ा वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं जो कि आम लोग नहीं कर पाते। जिनके दर्जे हैं सिवा, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनकी मुश्किलें हैं सिवा। जितना इंसान ऊपर ऊपर जाता जाता है, उसकी कुर्बानियाँ और उसकी आजमाइशें उतनी बढ़ती जाती हैं। अब देखिए, इस निकाह का असर क्या हुआ। इस निकाह का अमल में आना था कि मुनाफिकीन ने आपके खिलाफ़ नहायत वसी पैमाने पर झूठा प्रोपेगंडा शुरू कर दिया और तरह तरह के वसवसे और अफवाहें फैला दी, जिसके कुछ ना कुछ असरात सादा लोग मुसलमानों पर भी पड़े। इस प्रोपेगंडे को तकवीत पहुंचाने के लिए एक शरई पहलू भी मुनाफिकीन के हाथ आ गया था कि हज़रत ज़ैनब आपकी 5वीं बीवी थी। यानी दो बातें इकट्ठी जमा हो गई ना, एक तो ये है जबकि मुसलमान बजो वक्त 4 बीवियों से ज़्यादा की हिल्लत जानते ही ना थे, तो एक तो ये था कि आपकी 4 से ज़्यादा बीवियाँ हो जाएंगी इसके बाद, और दूसरी मुंह बोले बेटे की बीवी। तो इन सब के अलावा प्रोपेगंडे की असल जान ये थी कि हज़रत ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे समझे जाते थे और बेटे की बीवी से शादी बड़ी फुखुशकारी ख्याल की जाती थी। बिलाखिर अल्लाह ताला ने सूरत असाब में इस अहम मौजू से मुतल्लिक काफ़ी और शाफ़ी आयात नाजिल की और सहाबा को मालूम हो गया कि इस्लाम में मुंह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं, और ये कि अल्लाह ताला ने कुछ नहायत बुलंद पाया और मखसूस मकासद के तहत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खसूसियत के साथ शादी की तादाद के सिलसिले में इतनी वसत दी है जो किसी और को नहीं दी गई। सुभान अल्लाह, ऐसे लगता है कि जैसे मसल्स खिंचने लगते हैं जब आप अल्लाह के नबी के बारे में समझते हैं और सोचते हैं, और आपको इसका अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस स्ट्रेस से उस दौर में गुजरे होंगे। उम्महातुल मोमिनीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश नहायत शरीफाना, बाइज्जत, बुलंद पाया और उम्दा अंदाज की थी, और अज़वाज मुतहरात भी शर्फ, कनात, सब्र, तवाज़ो, खिदमत और इज़दवाजी हकूक़ की निगहदाश्त का मुरक्का थी, यानी मजमुआ थी। हालांकि आप बड़ी रूखी पीकी और सख्त ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसे बर्दाश्त कर लेना दूसरों के बस की बात नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि मुझे इल्म ही नहीं कि रसूलुल्लाह ने कभी मैदे की नरम रोटी खाई हो, यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिले, और ना आपने अपनी आँख से कभी भुनी हुई बकरी देखी। अल्लाह अकबर, याद कीजिए अपनी सज्जी को और भुनी हुई बकरियाँ और बारबिक्यूज़ को। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि दो दो माह गुजर जाते, तीसरे महीने का चांद नज़र आ जाता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग ना जलती। हज़रत उरवा ने दरियाफ़्त किया कि तब आप लोग क्या खाती थी, फरमाया बस दो काली चीज़ें, यानी खजूर और पानी, और इस पे बहुत सी हदीस है। यानी तंगी तुर्शी में गुजारा किया, आसान नहीं है एक मर्द का इतने घरों को चलाना, और अल्लाह के नबी जैसे शख्स के लिए जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता भी नहीं था। इस तंगी तुर्शी के बावजूद अज़वाजे मुतहरात से कोई लायक़े एताब हरकत सादर ना हुई। सिर्फ़ एक दफ़ा ऐसा हुआ, और वो भी इसलिए कि एक तो इंसानी फितरत का तकाजा ही कुछ ऐसा है, दूसरे इसी बुनियाद पर कुछ अहकामात मशरू करने थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस मौके पर आयते तहीर नाजिल फरमाई जो ये थी। तखजीर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी बीवियों को इख्तियार दे दिया था कि आप चाहें तो इसी तंगी तुर्शी में रहें और चाहें तो फिर आप को अल्लाह के नबी छोड़ दें और आप आज़ाद हो जाएँ। और आयत क्या थी, 28:29 अलहज़ाब, या युहन्नबी युकुल्ली अज़वाजिक इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारुल आखिरता फ़इन्नल्लाह अद्दलिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और जीना चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें साजो सामान देकर भलाई के साथ रुख्सत कर दूँ, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दारे आखरत को चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम में से नेक कारों के लिए ज़बरदस्त अजर तैयार कर रखा है। आप इन अज़वाजे मुतहरात के शर्फ और इस अजमत का अंदाज़ा कीजिए कि इन सब ने अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह दी और इनमें से कोई एक भी दुनिया की तरफ मायल ना हुई। इसी तरह सौखनों के दरमियान जो वाक़यात रोज़मर्रा का मामूल हुआ करते हैं, अज़वाजे मुतहरात के दरमियान कसरते तादाद के बावजूद इस तरह के वाक़यात शाज़ो नादर यानी कभी ना कभी, कभी कभार यानी बहुत कम शाज़ो नादर ही पेश आए, और वो भी बतकाज़ाए बशरियत। और इस पर भी जब अल्लाह ताला ने इताब फरमाया तो दोबारा इस तरह की किसी हरकत का ज़हूर नहीं हुआ। सूरह तहरीम की इब्तदाई 5 आयात में इसी का जिक्र है। आखिर में ये बात भी करना बेजा ना होगा कि हम इस मौके पे तो तअद्दुद अज़वाज के मौजू पर बहस की ज़रूरत नहीं समझते, यानी इतनी क्यों बीवियाँ थीं, क्योंकि जो लोग इस मौजू पर सबसे ज़्यादा ले दे करते हैं यानी बशिंदगान यूरोप, वो ख़ुद जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तलखी और बदबख्ती का जाम नोश कर रहे हैं, जिस तरह की रसवाइयों और जरायम में लतपत हैं, और तअद्दुद अज़वाज के असूल से मुँह फेर कर यानी मुनहरिफ होकर जिस किस्म के रंजोलम और मसाइब का सामना कर रहे हैं, वो हर तरह की बहस व जदल से मुस्तगनी कर देने के लिए काफ़ी है। अहले यूरोप की बदबख्ताना ज़िंदगी तअद्दुद अज़वाज के असूल के मबनी बरहक होने की सबसे पहली सच्ची सबसे सच्ची गवाह है, और असहाब नज़र के लिए इसमें बड़ी इबरत है। यानी बोली गहनी कहते हैं गालिबन इसको कि कैसे लोग आज बातें करते हैं लेकिन खुद 20 साल की उम्र तक एक लड़का कितने पार्टनर बदल चुका होता है। तो बहरहाल ये मौजू यहाँ पूरा हुआ, इसको अलग से भी रीनेम कीजिए आपकी शादियाँ और बीवियों से मुतल्लिक। कभी कभी लोग ऐसी चीज़ों का तकाजा करते हैं तो हम उनको सिर्फ ये एक लेक्चर आज का भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दिल में नबी सल्लम की मोहब्बत कूट कूट के भर दे, और जैसे मैं अपने माँ बाप के बारे में ज़रा सा शक नहीं आ सकता, इसी तरह मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बिल्कुल शक और शुबा ना आए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कोई सवाल या कोई है किसी का तो आप लोग माइक ले लीजिए।
अच्छा बाहर फिर रहे होते हैं या जो दे रहे होते हैं, एक लेडी मुझे ये मिली थी और इसने यही क्वेश्चन मुझे किया था कि जब मुसलमान कुरान पाक को समझ कर पढ़ते हैं तो हुजूर ने एक वो इंग्लिश में जब मुझे कोई लीफलेट देते हैं, एक लेडी बुढ़ी सी लेडी थी लेकिन वो क्रिश्चियन थी, वो लीफलेट दे रही थी तो उसने ये कहा था कि हजूर ने अपने बेटे से बेटे की वाइफ से शादी कर ली है, तो कहती है मुसलमान जो है वो जब मुसलमान समझ के कुरान पढ़ते हैं तो फिर वो मुसलमान हमला पसंद नहीं करते या कुरान को पसंद नहीं करते, उसने मुझे ये कहा था। लेकिन ये मसलन ये जब ये अप्रैल अप्रैल में होते हैं औरतें, तो वो औरत इतनी बुढ़ी थी फिर भी वो इस तरह काम कर रही थी अपनी ईसाइत का, तो मैंने कहा हजूर का तो कोई देखा ही नहीं था, तो उसने अपनी उससे कैसे शादी कर ली, तो मुझे जवाब देना नहीं आता मुझे। हालांकि जब से मैं इधर लंदन आई हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं इस्लाम को हम खिलाएं या बताएं, लेकिन मेरे पास अल्फाज ना तो इंग्लिश में होते हैं ना मुझे समझ नहीं आती कि, लेकिन मुझे ये पता था, मैंने घर आके भी अपने बेटे को कहा कि देखिए लेडी मुझे कह रही थी कि हजूर ने अपने बेटे की वाइफ से शादी कर ली, और मैंने देखा उनका कोई बेटा भी नहीं था सकता, तो ये कैसे हो सकता है, तो उसने मुझे मैं अब इसका कैसे जवाब देती इसको कैसे वो करती।
अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको इसका जवाब मिल गया, और
जी
ऐसी
आपने
बातों
क्वेश्चन
का
जनरेट
जवाब
कर लिया सिस्टर,
ये
इंशाल्लाह
आप देखिए
कल
कि
तक
आपने आज इसका जवाब सुन लिया है, और ऐसी बातों का जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मौजू को पढ़ने के बाद आपका शरह सदर हो गया। ऐसे लोगों से जब भी कोई ऐसी बात करे तो इससे ऊपर की बात करनी चाहिए, कि जब तक वो अल्लाह को नहीं समझेंगे नबी सल्लम का रसूल नहीं मानेंगे तो ये बातें तो आप एक बात करेंगे, वो उसे अगली बात पेश कर देंगे, तो लिहाजा ऐसी चीज़ों में बहस नहीं करनी चाहिए।
अच्छा, शोन आसान।